अध्याय चौथा, अयोध्या। भगवान श्रीराम की ये जन्मभूमि सदियों से लाखों श्रद्धालुओं के लिए पावन तीर्थ रही है और मैं भी उनमें सम्मिलित होना चाहता था। विश्व को अपने उदाहरण से सिखाने के लिए सर्वसुंदर भगवान अनेक वर्षों पूर्व मानव का रूप लेकर यहाँ अवतीर्ण हुए थे। एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा हेतु राजसिंहासन के अधिकार को सहर्ष त्याग कर सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। एक पति के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी को प्रेम और संरक्षण प्रदान किया। उनके रक्षा के लिए भयंकर असुरों से युद्ध किया। एक शिष्य के रूप में उन्होंने तुच्छ सेवाएं करते हुए तत्परता से अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण की। एक मित्र के रूप में उन्होंने अपने कोमल स्नेह द्वारा सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया। एक भाई के रूप में उन्होंने भारी प्रलोभनों के बीच भी निष्ठा एवं प्रेम का ज्वलंत उदाहरण रखा और बाद में एक राजा के रूप में भगवान राम ने सभी नागरिकों के साथ अपने पुत्र पुत्रियों के समान पक्षपात रहित व्यवहार किया। ये सभी गुण हमें सिखलाते हैं कि हमें अपने संबंधों को उत्तरदायित्व के साथ निभाना चाहिए। इन गुणों से हमारा हृदय भगवान से प्रेम करने के लिए आकर्षित होता है। अयोध्या की चौड़ी सड़क पर दोनों ओर खड़े विशाल मंदिर और महल तथा हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ देखकर मेरे मन में पहला विचार ये आया कि मैं एक राजसी नगरी में आ पहुंचा हूं। प्रत्येक रात्रि मैं सरयू नदी के बालुई तट पर सो जाता। एक दिन प्रातः स्नान के पश्चात मैंने भारी उत्सुकता के साथ श्रीराम की जन्मभूमि पर गया। मुझे किंचित भी आशा नहीं थी मैं संसार के सर्वाधिक विस्फोटक क्षेत्र में से एक पर आ पहुंचा था। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पूजनीय तीर्थस्थल श्रीराम की जन्मभूमि के स्थान पर कांटेदार बाड़ से घिरी एक परित्यक्त मस्जिद थी। संगीन लगी बंदूकों को और हथगोलों से लैस फौजी वहां गश्त लगा रहे थे। बाड़ के बाहर लगभग 10-12 साधु एक लकड़ी के चबूतरे पर बैठे श्रीराम के पावन नामों का कीर्तन कर रहे थे। भ्रमित हो मैंने उनसे इस विषय में पूछताछ की, किंतु किसी भी साधु को अंग्रेजी नहीं आती थी। अंततः किसी ने मुझे अंग्रेजी में लिखा एक पर्चा दिया। उसमें लिखा था कि ये स्थान श्रीराम की जन्मस्थली है और वर्षों पूर्व वहाँ एक भव्य राम मंदिर था, किंतु एक मुगल सम्राट ने उसके स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी और सालों से हिंदुओं और मुसलमानों में इस पर प्रभुत्व के लिए युद्ध होता आ रहा है। अंततः इस रक्तरंजित टकराव को रोकने के लिए सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। सशस्त्र सेना की चौकसी के भीतर आज किसी को भी यहां प्रवेश की अनुमति नहीं है, निष्कर्ष देते हुए पर्चे में लिखा था। इसलिए इन साधुओं ने तब तक श्रीराम के पावन नामों के निरंतर कीर्तन की शपथ ली है जब तक हिंदुओं को भीतर जाने की अनुमति नहीं मिल जाती। जेरूसलम में विवादास्पद डोम ऑफ द रॉक की ऐसी ही तनावग्रस्त स्थिति का स्मरण करते हुए मैंने गेट पर लगे लोहे के विशाल ताले को देखा। मैं विश्व की राजनीति और हो रहे रक्तपात पर विचार करने लगा। भगवत प्रेम की खोज में अपनी यात्रा में मैंने संसार के सभी धर्मों में एक विशेष सुंदरता पाई थी, लेकिन भगवान के नाम पर नफरत भरी हिंसा आज इस संसार की दुखद सच्चाई बन गई है। इस प्रकार का व्यवहार वे करते हैं जो वास्तविक सार को समझे बिना बाहरी वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का सार एक ही है, निस्वार्थ भगवत प्रेम और एक सच्चे अनुयायी के लक्षण होते हैं श्रद्धा, आत्मनियंत्रण, प्रेम और करुणा। कांटेदार बाड़ से देखते हुए मैंने परित्यक्त मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लकड़ी की एक मेज देखी। उस पर श्रीराम का एक चित्र था। पूरे सैनिक वेश में एक सिपाही उसकी ओर मार्च करता हुआ बढ़ा। उसके चमड़े के जूते धूल भरी भूमि पर जोर से आवाज कर रहे थे। उसके कंधे पर संगीन लगी एक बंदूक थी और छाती पर गोलियों की पेटी। झुककर प्रार्थना करते हुए उसने गेंदे के फूलों की एक माला चित्र पर डाल दी थी। इन परिस्थितियों में वही मंदिर का पुजारी था। मैं विस्मय से यह सब देखता रहा। अयोध्या में ही मुझे रामायण का अंग्रेजी संस्करण मिला, जिसे मैं प्रतिदिन सरयू के तट पर बैठकर पढ़ने लगा। यह प्राचीन ग्रंथ श्रीराम के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है। यद्यपि अभी भी मेरी प्रवृत्ति सर्वव्यापी एवं निर्गुण निराकार सत्य पर ध्यान करने की थी, फिर भी मैंने पाया कि मेरा चित्त धीरे धीरे भगवान के सगुण साकार रूप की ओर प्रबलता से खींचा चला जा रहा था। भगवान राम और उनके भक्तों के बीच प्रेम भरे आदान प्रदान को पढ़कर मेरा मन भक्ति मार्ग के समीप आने लगा। भगवान श्रीराम एक आदर्श थे जिन्होंने हमें धर्मपरायण व्यक्ति बनने के साथ साथ अपने परिवार और समाज के कर्तव्यों को निभाना भी सिखाया। जाते समय मैंने अयोध्या को धन्यवाद दिया और ये प्रार्थना की कि मैं वहां प्राप्त हुए अमूल्य उपहारों को कभी न भूलूं। फिर मेरी यात्रा मुझे तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध नगर प्रयाग ले गई। यहाँ कुंभ मेला लगता है जो धरती का सर्वाधिक विशाल सम्मेलन है। हर 12 वर्ष में 2 करोड़ से अधिक लोग सत्संग में भाग लेने और संगम में स्नान करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। प्रयाग 3 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 6 महीने पहले मैंने कुंभ मेले पर आने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उस समय मैं हिमालय में गंगा नदी के तट पर अकेला रहना चाहता था, किंतु मेरा सपना था कि एक दिन मैं यहाँ अवश्य जाऊँ। गर्मी की एक उमस भरी सुबह प्रयाग पहुँचकर मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से संगम जाने का मार्ग पूछा। अंगुली के इशारे से उसने मुझे राह दिखाई। गंगा पहुँचने पर मैं उसके रेतीले तट पर बैठ गया और भारत में अपने आरंभिक दिनों का स्मरण करने लगा। मुझे ऋषिकेश की वो शिला स्मरण हो आई जहाँ पर गंगा मैया ने मुझे वो शिक्षाएं दी थी जो भविष्य में मेरे जीवन को दिशा देने वाली थी। मुझे स्मरण हो आया कि कैसे मैंने गंगा के शाश्वत गीत में हरे कृष्ण मंत्र सुना था जो मेरी आत्मा में रच बस चुका था। अब प्रयाग में उसके तट पर बैठे हुए मैं जानता था कि यदि मैं केवल उसके प्रवाह के साथ चलूंगा तो यमुना और सरस्वती के साथ उसके संगम पर पहुंच ही जाऊंगा। वेद इसी संगम को तीर्थराज घोषित करते हैं। मैं संगम की दिशा में चलने लगा। भरी दोपहर थी और अग्नि के समान तपती वालु मेरे नंगे पैरों को जला रही थी। जिस दिन से मैंने यज्ञ कुंड की निकट चप्पल पहनकर नागा बाबाओं को रुष्ट किया था, उस दिन से मैंने चप्पलें छोड़कर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया था। किंतु आज रेत इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना असंभव सा लग रहा था। दूरी अंतहीन प्रतीत हो रही थी। लगभग 1 घंटे पश्चात अंततः एक सुंदर दृश्य मेरे आंखों के सामने प्रकट हुआ। हिमालय से उतरकर उत्तर भारत के मैदानी भागों से बहकर आती यमुना नदी गंगा मैया का आलिंगन कर रही थी। संगम में यमुना का गहरा नीला रंग और गंगा का सफ़ेद रंग नीचे से बहकर आती पारदर्शी सरस्वती से मिल रहा था। बालुई तट पर बैठ मैंने मेघहीन नीले आकाश को निहारा। एक बाज पंख फैलाए उड़ रहा था। उसके लाल भूरे पंख धूप में चमक रहे थे। धीरे धीरे वो नीचे आया और मेरे सिर से कुछ ही गज ऊपर मंडराने लगा। उसकी झिलमिलाती पीली आंखें ध्यान से नदी का निरीक्षण कर रही थी। अचानक वो तेजी से गंगा में झपटा। जल के भीतर एक उग्र मुठभेड़ होने लगी और जब वो बाज बाहर निकला तो उसके पंजों में 1 फुट लंबी फड़फड़ाती मछली जकड़ी हुई थी। फिर वो उस छटपटाती मछली को अपने पंजों में दबाए पास के एक जंगल में ले गया। इस सब को देखते हुए मैं सोचने लगा, नदी की अपनी दुनिया में खोई वो मछली अन्य किसी दिन की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन एक ही पल में उसकी दुनिया उससे छीन गई और वो मृत्यु के मुख में समा गई। उसी मछली की भांति हम भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, इस सच्चाई से अनजान कि किसी भी अनपेक्षित क्षण संकटों, त्रासदियों या मृत्यु के रूप में नियति का वाज झपटकर हमें अपनी सुखद दुनिया से विलग कर सकता है। हम नियमित रूप से इसे समाचारों में सुनते हैं या अपने इर्द गिर्द देखते हैं, किंतु शायद ही हम कभी गंभीरता से सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। शायद ये घटना सिखा रही थी कि हमें इस सोच से बचना चाहिए कि सब ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, तथा हमें अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को और अधिक महत्व देना चाहिए। यदि मछली और गहराई में तैर रही होती तो बाज उसे कभी पकड़ नहीं पाता। इसी प्रकार यदि हम भगवान के साथ अपने संबंध में और गहरे जाएंगे तो हम एक गहन और संतोषजनक आंतरिक सत्य को पाएंगे, जिससे हमारी चेतना ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जहां हम नियति के अनपेक्षित प्रहारों का स्थिर और निरासक्त मन से सामना कर पाएंगे। चिलचिलाती धूप में संगम पर एक भी प्राणी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं अपना सामान तट पर रखकर पानी में उतर गया। स्नान के पश्चात भी मेरा मन नहीं भरा, ये सोचते हुए कि मालूम नहीं इस जादुई स्थान पर फिर से आना होगा या नहीं। मैं तैरता रहा। मैंने दूसरे छोर पर जाने का प्रयत्न किया, वो लगभग 100 गज दूर था। प्रवाह का तीव्रता और थी और यमुना शांत थी। तैरते हुए गंगा का बहाव मुझे एक ऐसे तट पर ले गया जहां न तो कुछ था और न ही कोई दिखाई दे रहा था। मैं पानी से बाहर आया और रेतीले तट पर चढ़ा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैं मिट्टी में धंसने लगा, मानो कोई शक्ति मुझे जकड़कर निगल ले जा रही थी। दलदल, वो ठीक उसी मुलायम बालू जैसा दिख रहा था जिस पर मैं प्रायः सोता था, किंतु सूरत धोखा दे गई। हाथ पैर मारकर मैं जीवन के लिए संघर्ष करने लगा, किंतु सभी प्रयासों के बावजूद भी मैं और गहरा धंसने लगा। मैं घुटनों के ऊपर तक अंदर आ चुका था तथा धीरे धीरे और नीचे जा रहा था। अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं छटपट आया, किंतु सब व्यर्थ था। धरती माँ ने वास्तव में वो मुझे निगल रही थी। मैंने सहायता के लिए चारों ओर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। तभी मैंने अपनी बाईं ओर एक झाड़ी देखी, वही मेरी जीवन की एकमात्र आशा थी, और झपटकर मैंने उसे पकड़ लिया। वो कांटेदार निकली। मैंने उसे कसकर पकड़ा और स्वयं को पूरी शक्ति से खींचा। रक्त से हाथों से उस कांटेदार झाड़ी को खींच खींचकर मैं अपनी टांगें निकालने के लिए संघर्ष करने लगा। तपते सूर्य के नीचे मैं अपने प्राणों के लिए तड़प रहा था। छुरी जैसे पैने कांटे मेरे हाथों को चीर रहे थे और मेरे जलते हुए जख्मों से अनवरत खून बह रहा था। लेकिन मेरे पास और चारा ही क्या था? या तो मुझे असह्य पीड़ा को स्वीकार करना था, या फिर हार मानकर दलदल में एक घृणित और भयानक मौत को। थक कर हाँफते हुए और पसीने से तर बतर जैसे तैसे मैं अपनी एक टांग को खींचकर बाहर निकालता, किंतु कुछ क्षणों ही में ही वो फिर से धस जाती। मेरे अगले झटके के साथ वो कटीली झाड़ी अपनी गल चुकी जड़ के साथ रेत से उखड़ आई। मेरा मन चीख उठा। मैं थक कर चूर चूर हो चुका था। हार कर मैंने उस बेकार झाड़ी को फेंक दिया और एक गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। आश्चर्यजनक रूप से मैंने पाया कि जब मैं शांत हुआ तो दलदल का खिंचाव भी कम हो गया। मैं बालू पर समतल लेट गया। उस स्थिति में मैं लगभग तैर सकता था। भले ही इससे मेरी समस्या का हल नहीं हुआ, किंतु मुझे कुछ और समय मिल गया। एक एक इंच कर मैंने धीरे धीरे अपनी टांगें ऊपर खींच ली। फिर चींटी की चाल से रेंगते हुए मैं नदी में वापस आ गया। मैं बच गया, कम से कम ऐसा मुझे लगा। अभी मुझे केवल यमुना के मंद प्रवाह को पार करना था, लेकिन उसका अर्थ था पहले गंगा के प्रचंड प्रवाह का सामना करना। मैं जितना जोर लगाकर तैरने का प्रयास करता, गंगा मैया उतना ही मुझे पुनः दलदल की ओर धकेल देती। थकान मुझ पर हावी होने लगी। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध और नहीं लड़ सकता था। मैंने एड़ी से चोटी तक प्रवास किया, लेकिन मैं पीछे ही जा रहा था। मेरी भुजाएं थक कर लगभग बेजान हो गई। फिर भी मैं कड़ी मेहनत से एक ऐसा संघर्ष लड़ रहा था जिसमें जीत के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा गंतव्य स्थान इतनी दूर था कि वो मुश्किल से दिख रहा था। प्राणों के लिए संघर्ष करते हुए मैं प्रार्थना करने लगा। अचानक आशा की एक किरण प्रकट हुई। लगभग 200 फुट आगे एक छोटी नाव जा रही थी। उस पर एक दुबला पतला व्यक्ति बैठा था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और लाल पगड़ी थी। प्रवाह को काटते हुए मैं सहायता के लिए बार बार चिल्लाया। क्या उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी होगी? चिल्लाते चिल्लाते मेरी शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः उसने मुझे देख लिया। मुस्कुराते हुए उसने आगे की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए ही मेरे पास से ही नाव खेता हुआ निकल गया, मुझे डूबने के लिए छोड़कर। जबरदस्ती पानी पर पानी निगलते हुए मैंने अपने जीवन की सभी आशाएं छोड़ दी। मैंने सोचा उस दलदल में दम घुटकर मरने से अच्छा गंगा में डूबकर मरना है। वही गंगा जिसने ऋषिकेश में मुझे इतने बहुमूल्य पाठ सिखाए थे, जिसने एक माँ की भांति मेरा पोषण किया था, जिसे अपनी हारमोनिका के रूप में मैंने अपना अहंकार अर्पित किया था और जिसके गीत ने मेरी आत्मा को जागृत किया था, उसी गंगा को अब मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। प्रार्थना करने के अतिरिक्त अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी कुछ अद्भुत घटा। पानी में डूबते हुए मृत्यु की कगार पर एक सुंदर गीत मेरे हृदय में उदित हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार गंगा ने पहली बार मुझे यह मंत्र प्रदान किया था, उसी प्रकार अब वो उसे मेरी सर्वाधिक आवश्यकता भरी घड़ी में पुनः प्रदान कर रही थी। मन ही मन इस मंत्र का जप करते हुए मैंने स्वयं को उस पवित्र स्थान में मरने के लिए छोड़ दिया। वो मंत्र मुझे भय से परे एक शांति भरी स्थिति में ले आया। तभी एक उदित होते सूर्य के समान एक विचार मेरे मन में उठा। उस नाविक ने अपना हाथ आगे की ओर क्यों घुमाया था? क्या कहना चाहता था वो? एकाएक मैं समझ गया, वो कह रहा था, गंगा मैया से मत लड़ो, यमुना के प्रवाह के साथ तैरते हुए उसे पार करो। अपने संघर्ष के आवेश में मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। उस नाविक के संकेत ने मेरा जीवन बचा लिया। गंगा को पार करते हुए मुझे एक बार फिर से चिंताओं ने घेर लिया। मैंने अपना पासपोर्ट और जो थोड़ा बहुत सामान था उसे नदी के दूसरे तट पर रखा था। अभी मैं बहुत दूर आ गया था। क्या मेरा सामान वहीं पड़ा होगा? फिर मैं सोचने लगा, क्यों मैं इन छोटी सी चीज़ों के लिए उदास हूं? कुछ क्षण पहले मौत मेरे सामने खड़ी थी और केवल भगवान के नाम के पासपोर्ट की ही सहायता से मैं नदी के पार आ पाया और मेरी जान बची। घंटों पश्चात जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने अपना सामान रखा था, तो शाम ढल रही थी। सैकड़ों लोग जमघट लगाए स्नान कर रहे थे। उन सबके बीच मेरा सामान अनछुआ वैसे का वैसा पड़ा था। शोर मचाती भीड़ के बीच में मैं रेतीले तट पर बैठकर सोचने लगा। प्रातःकाल बालू मुझे धधकती अग्नि के समान झुलसा रही थी और बाद में वो मुझे निगलने के लिए लोलूप थी, किंतु तब वही बालू शीतल और कोमल है, मुझे आश्रय दे रही है। बालू की भांति ही व्यक्ति भी परिस्थितियों के प्रभाव से कभी भयंकर द्वेषी बन जाता है तो कभी परम कृपालु। हमारे संग और परिवेश का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के भीतर छिपी अच्छाई को ऊपर लाने का माध्यम बने, न कि बुराई का। रेत का हर कण इतना ज्ञान प्रदान कर रहा था, काश उसे सुनने के लिए मेरे पास कान होते। मैंने अपने हाथ में कोमल रेत उठाई, किंतु वो मेरी उंगलियों के बीच से सरक कर नीचे गिरने लगी। मैं गंगा मैया की लहरों में अपने जीवन मृत्यु के संघर्ष पर मनन करने लगा। एक ममतामयी माँ कभी कभार अपने बच्चे के साथ कठोरता से व्यवहार करती है, उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए जिसे वो आसानी से भूले। आज की अग्नि परीक्षा से मैंने क्या सीखा? शायद हम हमेशा एक प्रबल शक्ति से सीधे टक्कर लेकर नहीं जीत सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे प्रयास विफल हो जाएंगे। ये गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा है। ऐसी परिस्थितियों में शायद ये अधिक असरदार होगा कि हम कम प्रतिरोधक मार्ग ढूंढकर उस मार्ग से अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। सूर्यास्त हो रहा था। मैंने याद किया कि कैसे आज सुबह एक बाज ने अकस्मात एक मछली को नदी से छीन लिया था। कुछ समय पश्चात विधाता के पंजों ने बिना कोई चेतावनी दिए मुझे भी प्राण बचाने के लिए उसी नदी में तड़पने के लिए मजबूर किया था। मैंने सोचा, आज भगवान ने मुझे एक झलक दिखाई है कि अभी भी मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर हूँ। यह आसान पाठ नहीं था। आशा करता हूँ कि मैं इस आसानी से न भूलूं। मैंने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वहां उड़ते छोटे मोटे पंछियों के ऊपर एक बाज सम्राट जैसा आत्मविश्वास लिए सहजता से सांस के धुंधल के में तैरता जा रहा था। यहाँ पे चौथा अध्याय समाप्त होता है।